माधव जय कुंज बिहारी नितय गौर हरि वो हरि वो हरि वो परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्री मधेश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवराम दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा वल्लभ ललिता विशाख गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। श्री कार्तिक व्रत महामहोत्सव की जय। श्री दीपदान महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू सेंट डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सेंट डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सेंट डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा। तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जो कि रोज इस दामोदराष्टकम का पाठ करते हैं? रोज पाठ करते हैं, हाथ उठाइए। कितने लोग रोज पाठ करते हैं? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस लोग हैं, है ना। तो आज हरि बोल। तो आज हमें आदेश मिला है कि इसको समझाएं, दामोदराष्टकम जिसका हम पाठ करते हैं इसका अर्थ समझें, है ना। तो इसमें बहुत रस है, है? ये जो प्रार्थना है दामोदराष्टकम की, इसमें बहुत रस है ना। तो इसका हम जो है रसास्वादन करेंगे। तो सबसे पहले जो पढ़ना जानते हैं वो किताब ये ले लें, पर्चा। इस पर्चे को देखिए, इस पर्चे में जो शब्द लिखे हैं इनको देखिए। पहला शब्द क्या है इसमें? नमामीश्वरम, ठीक है। नमामी ईश्वरम, तो दो शब्द हैं, हाँ, नमामी और ईश्वरम। तो ये जो है शुरू के दो शब्द हैं, नमामी ईश्वरम। नमामी का मतलब है मैं नमस्कार करता हूँ, ईश्वरम ईश्वर को, है ना, ईश्वर को नमस्कार करता हूँ, है ना। अच्छा, ईश्वर कैसा है? तो ईश्वर, ईश्वर कैसा है, है ना। तो इसका जो है लक्षण बताया है, सच्चिद आनंद रूपम, उसका रूप है। तो सबसे पहली बात क्या है, ईश्वर कैसा है? रूप है। लोग क्या मानते हैं? ईश्वर का कोई रूप नहीं है, है ना। तो बहुत इस तरह से कुप्रचार हो रहा है ईश्वर के बारे में, बड़ा उल्टा प्रचार हो रहा है, है ना। और कितने संस्थाएं ऐसी बनी हुई हैं, है ना, जो ईश्वर को निराकार घोषित कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल गलत। ईश्वर निराकार नहीं है। रूपम, रूप है उसका, लेकिन रूप हमारे जैसा रूप नहीं है। इस भौतिक संसार में जितने रूप हैं वो कैसे हैं? असत अचित निरानंद, उससे उल्टा सच्चिद आनंद रूप है ना। सच्चिदानंद रूपम। सत का मतलब क्या है? सनातन, ऐसा रूप जो सनातन हो, है? कभी नष्ट नहीं होता, सनातन है। इस भौतिक संसार में जितने रूप हैं वो कैसे हैं? नष्ट हो जाते हैं, असत है ना। तो हमारा शरीर कैसा है? असत है, नष्ट होने वाला है। लेकिन भगवान का शरीर, ईश्वर का शरीर कैसा है? सत। ठीक है, फिर दूसरा लक्षण क्या है? चित। चित का मतलब क्या है? ज्ञानमय, ज्ञानमय, संपूर्ण ज्ञान, शरीर में ज्ञान है। और हमारा शरीर क्या है? अचित, अज्ञानमय है, हमेशा भूलते रहते हैं। अगर मान लीजिए आपका रोज का नियम नहीं है यहाँ आने का, तो आपसे पूछा जाए कि ठीक किस समय 24 घंटे पहले आप कहाँ थे, क्या करें, तो आप नहीं बता सकते। अगर रोज का नियम है तो कहेंगे भाई इस समय तो कल यहीं पर थे। लेकिन अगर कोई नियम नहीं है, है ना, तो 24 घंटे पहले इसी समय आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, आपको बहुत दिमाग में जो है वो करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, है ना। तो हर हमेशा भूलते रहते हैं, अज्ञान है ना। तो हमारा शरीर में अज्ञान भरा हुआ है, है? कैसा शरीर हमारा? अचित। और भगवान का शरीर कैसा है? चित, है ना, सच्चित। फिर तीसरा लक्षण क्या है? आनंद। उनके शरीर का तीसरा लक्षण क्या है? आनंद, आनंद ही आनंद है। और हमारा शरीर कैसा है? निरानंद। कई प्रकार के कष्ट हैं, है ना, कभी इधर दर्द, कभी इधर दर्द, कभी इधर दर्द, ये सब दर्द ही दर्द है, है ना। तो कष्ट ही कष्ट है, निरानंद। तो हमारा जो शरीर है वो असत, अचित, निरानंद है, है ना। तो जो निराकारवादी हैं वो सोच नहीं सकते कि ऐसा भी रूप हो सकता है, क्योंकि उनके अनुभव में इस भौतिक संसार में ऐसा कोई रूप नहीं है, हाँ, उनको अनुभव ही नहीं है ऐसे शरीर का, कि भाई ऐसा भी शरीर हो सकता है क्या जो सच्चिदानंद हो। तो वो क्या घोषित करते हैं? भाई ईश्वर का कोई रूप नहीं है, निराकार है, है ना। तो एक अज्ञान है, बहुत बड़ा अज्ञान है, है ना। और ज्ञान, उसको बड़ा भारी ज्ञान घोषित करते हैं, क्योंकि पास बहुत ज्ञान है, लेकिन वह है अज्ञान कि निराकार घोषित करते हैं ईश्वर को, है ना। ईश्वर को निराकार कहना एक प्रकार से निंदा करना है, आप समझ रहे हैं, ईश्वर को निराकार कहना एक प्रकार से निंदा करना है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि भाई साहब आपके आंखें नहीं हैं, तो आपको बुरा लगेगा ना, है? मैं आपसे कहूँ माता जी आपकी आंखें नहीं हैं, तो आपको बुरा लगेगा। माता जी आपके मुंह नहीं है, माता जी आपके कान नहीं है, हैं, माता जी आपके हाथ नहीं है, आपके पैर नहीं है, तो आपको बुरा लगेगा, है ना। उसी प्रकार से भगवान को जब निराकार कहते हैं कि उनके हाथ नहीं है, उनके पैर नहीं, उनकी आंखें नहीं है, तो क्या है? ईश्वर की निंदा है, तो बहुत निंदा है, है ना। और वो सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा ज्ञान बता रहे हैं, बहुत बड़ा ज्ञान है ये। तो ईश्वर जो है कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपम, है ना। तो नमामि, उस ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। इसलिए निराकारवादी नमस्कार नहीं करते ईश्वर को, क्यों नमस्कार करें? जब आकार ही नहीं है तो क्या नमस्कार करें, है ना। तो जो है ना, बहुत बड़ा ज्ञान है। फिर क्या है दूसरी पंक्ति में, क्या शब्द है? लसत कुंडलम, है ईश्वर, है ईश्वर के जो है कानों में कुंडल शोभा दे रहे हैं, कुंडल शोभा दे रहे हैं, कुंडलों की बहुत शोभा है, उनके जो है कान में कुंडलों की बहुत शोभा है। लसत कुंडलम, इसके बाद गोकुले भ्राजमानम, गोकुल में भ्राजमान है, शोभायमान, गोकुल में उनकी बहुत शोभा है। गोकुल का मतलब क्या है? कुल माने परिवार, गऊओं के परिवार में उनकी बहुत शोभा है, है ना। तो ईश्वर को जो है गऊओं का परिवार बहुत अच्छा लगता है, ईश्वर गऊओं के परिवार में रहते हैं, गोकुल में रहते हैं, है ना, उनको गऊएं चराना बहुत पसंद है। ब्रह्म संहिता में लिखा है, वेणुकुलंतम अरविंद दलायताक्षम बरहावतंस मसिताम्बुद सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामी, है ना। तो वो गोविंद है, है ना। और फिर वेणुकुलंतम अरविंद दलायताक्षम बरहावतंस मसिताम्बुद सुंदरांगम नहीं, वो कैसा है? सुरभि रविपालयंतम चिंतामणि प्रकर सदमसी सदमसु कल्प वृक्ष है लक्षावृतेश सुरभि रविपालयंतम। सुरभि है गऊओं को जो है जो पालन करते हैं, चिंतामणि प्रकर सदमसु है ना, तो ये जो है उनका धाम है गोकुल या गोलोक। गोलोक धाम है, गोलोक धाम का एक हिस्सा है गोकुल, दूसरा हिस्सा है वृंदावन, तीसरा हिस्सा है मथुरा। गोलोक धाम के जो है अलग अलग हिस्से हैं, है ना। तो गोकुले भ्राजमानम, गोकुल में भ्राजमान है। इसके बाद यशोदा भिया उलूखला धावमानम, ये इकट्ठा एक शब्द है लेकिन इसे कई शब्द बनते हैं। यशोदा फिर भिया उलूखलात धावमानम, है ना, तो भियो हो जाता है लेकिन भिया उलूखलात। यशोदा भिया, यशोदा के भय से उलूखलात उखल से धावमानम दौड़ते हुए, तो उसी ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ जो यशोदा के भय से उखल से कूद करके दौड़े। क्यों दौड़े कि पकड़े जाएंगे माता यशोदा के भय से पकड़े जाएंगे, है ना, तो इस भय से है कि माता उनको पकड़ लेगी, इस भय से दौड़े हैं, है ना। तो ये जो है ध्यान का विषय है, ऐसा ईश्वर जो माता के भय से जो है दौड़े भागे, है ना, तो भाग रहे हैं भगवान, है ना। यशोदा माता को यशोदा क्यों बोलते हैं? यशोदा, दा माने देने वाली, यश संसार की स्त्रियों को यश देने वाली। संसार में कैसी भी स्त्री है जिससे भयभीत होकर के भगवान भागते हैं, हैं, कितना मतलब यश की बात है स्त्रियों के लिए, हैं, कि संसार की स्त्रियों में एक ऐसी भी स्त्री हुई जिसके भय से जो है भगवान भाग रहे हैं, हैं, उनको कोई भय नहीं है, भय भी उनसे भयभीत होता है लेकिन फिर भी वे माता से भयभीत है और भाग रहे हैं। यशोदा भियो उलूखलात धावमानम परामृष्टम, परामृष्टम का मतलब है फिर भी पकड़े गए। देखो वो ईश्वर है पकड़े गए, है कैसे पकड़े गए? अत्यंत तो द्रुत गोप्या, गोपी ने जो है बहुत तेजी से भाग करके जिनको पकड़ लिया है, माता यशोदा ने उनको बहुत तेजी से भाग करके पकड़ दिया है। तो उनको तो कोई नहीं पकड़ सकता, बड़े बड़े योगी जो है मन की गति से भी चलें तो भी उनको नहीं पकड़ सकते, है ना। काल्यवन ने उनको पकड़ने की कोशिश की थी, है जब मथुरा में काल्यवन ने आक्रमण किया था तो म्लेच्छ था, है 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना से मथुरा को घेर लिया था, है तो भगवान जो है वो काल्यवन जो है भगवान से युद्ध करने के लिए आया था। उसने सुना था कि मथुरा में ही एक व्यक्ति है, पूरी पृथ्वी में एक ही व्यक्ति जो मुझसे युद्ध कर सकता है, वो मथुरा में वासुदेव, वो मुझसे युद्ध कर सकते हैं। तो बहुत आशा के साथ आया था कि मुझे युद्ध करने का अवसर मिलेगा, कोई ऐसा ऐसा हो युद्ध करने लायक जो मुझसे युद्ध करे, तो बड़ी आशा से आया था। लेकिन भगवान क्या करते हैं, बिना किसी हथियार लिए और पैदल जो है उसके सामने से ऐसे चले जा रहे हैं, जैसे मतलब युद्ध नहीं करना चाहते हैं, ऐसे चले जा रहे हैं। तो वो जो है मतलब बोला कि अरे अरे मैं युद्ध करने आया हूँ, तुम मुझे क्यों निराश कर रहे हो, मैं बड़ी आशा युद्ध करने की बड़ी आशा लेके आया हूँ। तो भगवान क्या बोले, भगवान बोले तुम अशुद्ध, तुम इतने अशुद्ध हो, म्लेच्छ हो, है कि मैं तुमसे युद्ध क्या, मैं तो तुमको छूना भी नहीं चाहता हूँ, मैं तो तुमको छूना भी नहीं चाहता हूँ। तो काल्यवन बोला अच्छा तो मैं छू लूँ तो क्या होगा? तो बोला अगर तुम छू लो मुझे तो मैं परास्त हो जाऊँगा। भगवान बोले अगर तुम छू लो मुझे, क्योंकि मैं तुमको छूना नहीं चाहता हूँ, तुम बहुत अशुद्ध हो, है तो बोला मैं छू लूँ तो, भगवान बोले तो समझो कि मैं हार गया, युद्ध करने की जरूरत नहीं है, तुम छू लो केवल मुझे तो मैं युद्ध में हार गया तुमसे। तो वो जो है छूने की कोशिश कर रहा था, तो उसने पूरी शक्ति लगा करके जो है वो भगवान को छूने की कोशिश कर रहा है, और भगवान जो है बड़े आराम से चलते जा रहे हैं, बड़े धीरे धीरे बिना परिश्रम के चल रहे हैं और हंसते जा रहे हैं, बोले हाँ हाँ अब थोड़ा और जोर लगाओ तो मुझे छू लोगे हैं। और वही मतलब जैसे समझो कि हाँ एक कुछ अंगुल मान लो कुछ अंगुल की दूरी है, हैं, वो सोचता अब मैं छू लूंगा, अब मैं छू लूंगा, है ना, लेकिन कैसे छू सकता है, भगवान को नहीं छू सकता है ना। तो इतना शक्तिशाली कालयवन भगवान को नहीं छू पाया है ना। ये माता यशोदा उनका तो शरीर वैसे ही स्थूल है, हैं, मोटा शरीर है, कहाँ दौड़ पाती ज़्यादा तेज, लेकिन उन्होंने पकड़ दिया है ना। परामृष्टम अत्यंत तो द्रुत्य गोप्या, तो बहुत तेजी से माता यशोदा दौड़ी, तुरंत पकड़ लिया। वास्तव में माता यशोदा ने अपनी शक्ति से नहीं पकड़ा, उनके पास शक्ति नहीं पकड़ने की, लेकिन वास्तव में भगवान बंधते हैं किससे, भक्ति के द्वारा, भक्ति के द्वारा बनते हैं, है ना। तो गोपाल चंपू नामक ग्रंथ में बड़ी रोचक घटना है, इसका वर्णन जो है बहुत रोचक तरीके से जीव गोस्वामी ने किया है। तो उसने बताया है कि कृष्ण जो है सबसे पहले तो माता यशोदा घर में है, तो वो जो दिन था वो गोवर्धन पूजा के एक दिन पहले का दिन था। गोवर्धन पूजा उस समय नहीं होती थी, गोवर्धन पूजा तो भगवान ने शुरू कराई जब वो 7 वर्ष के थे, और इस समय तो भगवान 3 वर्ष और 2 महीने के, समझो 3 वर्ष 2 महीने, मतलब जन्माष्टमी के बाद जैसे ये समय आता ना कार्तिक का, तो कितने महीने होते हैं भाद्र के बाद, भाद्रपद आश्विन और कार्तिक, तो 2 महीने 2.5 महीने हैं, 3 साल और 2.5 महीने के हैं भगवान, है ना। तो उस समय इंद्र की पूजा नहीं होती, गोवर्धन पूजा नहीं होती थी, इंद्र की पूजा होती थी, इंद्रयाग, हैं, किस दिन, कार्तिक की अमावस्या के पहले दिन, है ना, यानी शुक्ल प्रतिपदा, शुक्ल प्रतिपदा को होती ना गोवर्धन पूजा, है, तो शुक्ल प्रतिपदा को जो है इंद्रयाग होता था, इंद्र की पूजा होती थी, है। तो उस समय माता यशोदा के घर में तो सैकड़ों दासियां थीं, हैं, तो माता यशोदा को जो है कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि कृष्ण के साथ वो 24 घंटे रहती थी, और बालक चाहता भी है कि माता 24 घंटे मेरे साथ रहे, तो माता जो है हमेशा कृष्ण के साथ रहती थी और सब काम जो है घर की दासियां कर देती, हैं। लेकिन आज के दिन क्या हुआ कि चूंकि अगले दिन इंद्रयाग होना है, तो अन्नकूट होगा, तो सब घर में जो है, सभी घर में जो है, हैं, लोग अपने अपने घरों में क्या है अनेक प्रकार के व्यंजन बनाएंगे। तो माता यशोदा के घर में जो दासियां थीं उन्होंने क्या किया, सवेरे सवेरे जितना काम था घर का वो तो पूरा कर लिया, और फिर छुट्टी लेके चली गई अपने घर में भी, अब उनको काम करना है। तो घर में जो है अब केवल कृष्ण रहे और माता यशोदा रहे, अब ये समस्या हो गई, अब समस्या हो गई कि माता यशोदा अकेली हैं और कृष्ण घर में हैं, है? और कृष्ण जो है छोड़ना नहीं चाहते कि माता यशोदा मुझे छोड़ के कोई काम करे, और माता यशोदा को तो बंधन है, घर के भी काम है, अब क्या करें, है? और समय रोहिणी भी जो है वो पुनंद के घर गई थी, उनको निमंत्रण मिला था, तो वो जो है रथ में बैठ करके उपनंद के घर गई थी, बलदेव भी उनके साथ चले गए थे, तो घर में बलदेव भी नहीं है, रोहिणी भी नहीं है, अकेले कृष्ण है और यशोदा है, हैं, और कृष्ण अभी सो रहे हैं, सब दासियां जो है छुट्टी लेके चली गई और कृष्ण अभी सो रहे हैं, तो माता यशोदा सोचते कि अभी अच्छा मौका है कि मैं कुछ काम कर लूं क्योंकि जब ये जाग जाएगा तो मुझे कुछ काम नहीं करने देगा, है ना। तो माता यशोदा जो है उस समय दिन भर के लिए जितना मक्खन की आवश्यकता है वो मंथन करने लगी, तो मंथन करने लगी, तो कृष्ण जो है जब जागते हैं तो उन्होंने महसूस किया कि उनके साथ बहुत अन्याय किया माता ने, मेरे साथ माता ने बहुत अन्याय किया, हैं, कि मुझे सोता छोड़ करके चली गई, हैं। तो कृष्ण जो है उठे, हैं, और गिरते पड़ते जो है माता के पास आए, माता के पास आए और रोक दिया है, सब काम बंद करो, केवल हाँ मुझे खिलाओ, मुझे खिलाओ, मेरे साथ खेलो और कोई काम नहीं। बालक तो अपना अधिकार समझता ना पूरा माता के ऊपर कि कोई काम नहीं है, कोई काम जरूरी नहीं है। तो माता को जो है मंथन करने से बिल्कुल रोक दिया। तो माता को तो बहुत खुशी होती है, प्रेम है बालक से, तो बहुत खुशी हुई कि है जो है बालक जो है मेरे मेरे से जो है इतना चाहता है मुझे। तो माता यशोदा जो स्तनपान कराने लगी, और जब स्तनपान कराने लगी तो माता यशोदा को उस समय याद आया तो दूसरे घर में वो कई दूध जो है रखे थे जो कि आग में मतलब गर्म हो रहे थे, कई दूध रखे हुए थे। तो माता यशोदा को याद आया हाँ कि वो उफान आ सकती है, उफान आ सकती है, तो देखना जरूरी है ना। और अगर ऐसे जाएंगी जल्दी में कृष्ण को लेकर के तो कृष्ण गिर सकते हैं रास्ते में, इसलिए कृष्ण को जो है उन्होंने जो है दूध अतिरिक्त छोड़ करके, दूध पीते थे कृष्ण अतिरिक्त छोड़ करके और जमीन में रख करके कृष्ण को, और ये भी कहा कि मैं अभी आती हूँ दूध को देख करके, तब तक तुम इसकी रक्षा करना, ये बिलोनी जो है ना दही की बिलोनी की रक्षा करना है ना। तो ऐसा कह करके गई, लेकिन कृष्ण को तो जो है अच्छा नहीं लगा, ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा है कि मुझे छोड़ के माता क्यों गई है ना। तो उन्होंने फिर क्या किया, वो जो बट्टा था, सिल के साथ बट्टा होता है ना पीसने के लिए बट्टा है ना, तो उसी बट्टे से जो है उसको जो है तोड़ दिया है, और सब जो दही है वो सब फैल गया है ना। और कृष्ण ने ऐसा करके फिर पूरे कमरे में वो जो है दही फैल गया, तो उसी में ही अपने पैर भी उनके भीग गए, और भीगे पैर से जब अंदर गए घर के अंदर तो पैर के निशान भी बन गए। आप कृष्ण अंदर जाते हैं तो एक दूसरा घर है, उसके अंदर जाना चाहते हैं तो उस घर का जो है जो दरवाजा था, पहले दरवाजे होते थे लकड़ी के ना, लकड़ी के दरवाजे होते थे और बीच में बहुत वो होती थी गैप, दो दरवाजे में भी बहुत गैप होता था, तो उसमें वो लगाते थे, एक लकड़ी का टुकड़ा लगाते थे बीच में जिससे कि वो गैप ना रहे है ना, उसको क्या बोलते हैं अभी है अड़बंगा, अड़बंगा अड़बंगा जो है लगाया था। तो कृष्ण अड़बंगा को हटाया और अंदर चले गए, लेकिन फिर सोचा कि ताला तो लगा हुआ है घर का, ये माता तो जो है माता तो अंदर ऐसे नहीं आ पाएगी, लेकिन वो चाबी टंगी है खूंटे में तो चाबी से जो है ताला खोल करके अंदर आएगी, तो चाबी फेंक दिया निकाल कर। चाबी को दूर फेंक दिया है कि माता को चाबी नहीं मिलेगी तो अंदर नहीं आ पाएगी। अलमंगा को हटा करके अंदर चले गए और अलमंगा को फिर वहीं लगा दिया, फिट कर दिया, अंदर चले गए। तो उस घर के अंदर जो है जो छीका लटका हुआ था मक्खन का है, तो उसमें क्या है कि वो जो है एक चारपाई जो है दीवार के सहारे खड़ी थी, तो उसके सहारे जो है वो चढ़े ऊपर, उसके सहारे ऊपर चढ़े और फिर जो है उखल जो है जो उल्टा रखा हुआ था उसके ऊपर खड़े हुए और मक्खन को जो है खा रहे हैं, और खिड़की से जो है बंदर भी हैं, तो बंदर भी जो है बंदर बंदर को ही बांट रहे हैं है ना। अब जब माता जब आई तो देखा कि सब जो है फैला पड़ा है दूध है, तो स्पष्ट था, तो समय आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी होती है कि हे माता तुमने उफनते हुए दूध को तो शांत कर दिया, लेकिन अब बालक उफन गया उसको जब शांत करो तब तुम्हारा कुछ विशेष गुण माना जाएगा। अब बालक में उफान आ गई, दूध उफनते दूध को तो तुमने शांत किया, लेकिन अब बालक उफन गया है तो उसको जब शांत करो तब तुम्हारा जो है गुण माना जाएगा। तो माता सुधा हंसी, अब जो है उनको कृष्ण के पैरों के निशान देख करके समझ गई कि कहाँ गया है कृष्ण, तो अब वो जो है ताला लगा हुआ है, अंदर तो घुस गया क्योंकि बालक है वो तो घुस गया, अब माता कैसे घुसेगी है ना, तो चाबी तो फेंक दिया था। लेकिन वो भी कृष्ण की माता है, आ गई किसी उपाय से आ गई अंदर। अब जब अंदर आ गई माता है तो कृष्ण को कैसे पता चला कि अंदर आ गई, माता तो बहुत चुपके से आ रही थी पकड़ने के लिए, चोरी पकड़ने के लिए चुपके से आ रही थी। लेकिन उस समय क्या हुआ कि जो कौवे अंदर आ रहे थे खिड़की से, जो कौवे अंदर आ रहे थे वो जल्दी से भागे खिड़की से बाहर भागे माता को देख करके, तो कृष्ण को समझ गए कि माता आ गई है, ये कौवे भागे। और वो जो बंदर है जो मक्खन खा रहा था, तो उसने देखा कि माता के हाथ में छड़ी है, हालांकि छड़ी जो है कपड़े में ढकी हुई थी माता ने, लेकिन बंदर समझ गया, उसको भी बहुत बुद्धि थी, समझ गया है कि छड़ी जो है दिखाई तो नहीं दे रही है, ये कपड़े के अंदर है छड़ी है। तो वो जो है जल्दी से खिड़की से वृक्ष की शाखा में कूद करके चला गया है। और तब जो है कृष्ण ने जब देखा कि माता आ गई है, तो फिर इसमें कहा लिखा है ना कि यशोदा भ्यो उलूखला धाव मानम, यशोदा के भय से उखल से दौड़े है। अब जब कृष्ण जो है जब दौड़े, तो कृष्ण सोचते हैं कि कौन से दरवाजे से मैं बाहर निकलूं, क्योंकि घर के बहुत से दरवाजे हैं है ना। तो सवेरे का समय था, ये दिवाली का दिन था, अमावस्या, सवेरे का समय था, तो कृष्ण ने सोचा कि मैं घर के उस दरवाजे से बाहर निकलूं जो मुख्य सड़क में निकलता है, मुख्य सड़क में निकलता, क्योंकि वहां पर पुरुष लोग चलते हैं तो माता क्यों आएंगी, तो वहां पर माता नहीं आएगी। तो उस दरवाजे से बाहर निकले जो मुख्य सड़क में निकलता था, लेकिन माता ने देखा कि सवेरे सवेरे लोग निकलते हैं, सड़क खाली। तो वो आ गई, उसी सड़क में आ गई है ना। तो अब कृष्ण जो है अब भाग रहे हैं है? लेकिन जब तक कृष्ण भागते रहे तो माता से उनको नहीं पकड़ सकती थी है? जब तक कृष्ण आगे की तरफ देख रहे हैं है? और माता पीछे पीछे दौड़ रही है, तो कृष्ण को नहीं पकड़ सकती थी। लेकिन जब कृष्ण पीछे की तरफ देखा कि माता आ रही है क्या, जैसे पीछे की तरफ तो पकड़े गए, उसी समय पकड़े गए। तो ये जो है इसमें वर्णन है, परामृष्टम अत्यंत तो द्रुत गोप्या, तो बहुत तेजी से जो है माता ने दौड़ करके पकड़ा है ना। तो कृष्ण जो है मतलब पकड़े गए। इसके बाद शब्द क्या है, प्रदंतम, प्रदंतम है ना। अब उनका जो है रोना शुरू हुआ, रुदन शुरू हुआ है ना। तो रुदन ये बालक का जो है सबसे बड़ा हथियार होता है, रोना है ना। तो रोने के हथियार से जो है वो सब कुछ जीत लेता है, सब परास्त हो जाते हैं सब लोग, इसलिए रुदंतम है ना। रुदंतम मुहुर है नेत्र युग्मम रजंतम, मुहुर का मतलब बार बार रो रहे हैं, और मुहुर नेत्र युग्मम, युग्मम का मतलब जोड़ा, नेत्रों का जोड़ा, मृजंतम माने मल रहे हैं, दोनों नेत्रों को जो है मल रहे हैं है? मुहुर का मतलब बार बार, बार बार मल रहे हैं, नेत्रों को मल रहे हैं है? कराम भोज युग्मेन सातंक नेत्रम, कर अम्भोज युग्मेन, युग्मेन का मतलब जोड़ा है? तो कर कमल के जोड़े से, तो दोनों हाथों से दोनों नेत्रों को जो है मल रहे हैं है ना, मल रहे हैं। और सातंक नेत्रम, और जब देखते हैं आंखें खोल करके है, तो माता को देखते हैं तो आतंक, नेत्रों में आतंक छाया हुआ है। आतंक का मतलब क्या है कि माता मेरे ऊपर अन्याय कर रही है, मेरे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। जैसे आतंकवादी होते हैं ना, आतंक करते हैं, तो बालक जो है आतंकित हो रहा है, माता जो है आतंक, आतंकवादी है माता, तो सातंक के नेत्रम, सातंक के नेत्रम है। मुहु श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ, मुंह माने बार बार श्वास, बार बार श्वास लेते हैं तो कंप त्रिरेखांक कंठ, कंठ जो है कांपता है, श्वास लेते हैं ना तो गला जो है गले में कंपन होता है। त्रिरेखांक कंठ, त्रिरेखा अंक, तीन रेखाओं का चिन्ह बना हुआ है जिनके गले में है। तो कृष्ण की जो गर्दन है वो बहुत सुंदर है, उसमें तीन रेखाएं हैं गले में है ना। त्रिरेखांक कंठ स्थित अग्रैव, स्थित अग्रैव दामोदरम भक्तिबद्धम, तो सामने ही जो है भगवान खड़े हैं, दामोदर है, और भक्ति से बंधे हैं, माता यशोदा की भक्ति से बंधे हुए हैं। इसके बाद इतिद्रिक स्वलीला भी रानंद कुंडे, इतिद्रिक का मतलब इस प्रकार की, स्वलीला भी अपनी लीलाओं से, अपनी लीलाओं से आनंद कुंडे, आनंद के कुंड में है, इस प्रकार की लीलाओं के द्वारा आनंद के कुंड में सुघोषम निमज्जंतम, अपने घोष यानी अपने समाज को निमज्जंतम डुबा रहे हैं। किस में डुबा रहे हैं? आनंद के कुंड में डुबा रहे हैं अपने पूरे जो गोप समाज, गोप और गोपियों को जो समाज है घोष है, उसको आनंद के कुंड में डुबाते हैं। आनंद सुघोषम निमज्जंतम आख्यापयंतम, आख्यापयंतम का मतलब है और बता रहे हैं, बता रहे हैं किसको बता रहे हैं? तद तदीय ईषित अज्ञेश, ईषित अज्ञेश उनकी जो ईषिता को जानने वाले हैं, क्योंकि इनकी ईषिता को माता यशोदा तो नहीं जानती। माता यशोदा के ज्ञान को भगवान ऐसे ढका हुआ है कि वो नहीं समझते कि ईश्वर है, वो तो मेरा बालक है, कृष्ण मेरा बालक है। लेकिन जो उनकी ईषिता को जानते हैं उनको बता रहे हैं आख्यापयंतम, क्या बता रहे हैं? भक्तैर्जितत्वम, कि भक्तों के द्वारा कैसे जीते गए ना, उनका स्वभाव है, है? क्या स्वभाव है? भक्तों के द्वारा पराजित होने का स्वभाव है इनका। तो वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, हाँ, जो उनके ऐश्वर्य को जानते हैं उनको बता रहे हैं कि मैं अपने भक्तों के द्वारा किस प्रकार पराजित होता हूँ। भक्तर्ज तत्वम पुनः प्रेम तस्तम शतावृत्ति बंदे, तो फिर से प्रेम पूर्वक उन्हीं को, तम, तम का मतलब उन्हीं ईश्वर को, तम ईश्वरम है ना, सत आवृत्ति बंदे, सत आवृत्ति, सत का मतलब सौ, आवृत्ति माने बार, सौ बार बंदे यानी वंदना करता हूँ, पुनः फिर से वंदना करता हूँ, शतावृत्ति बंदे। इसके बाद वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम्बा, तो वरम मतलब वरदान, देव हे देव, मोक्षम यानी मोक्ष का वरदान, ना मतलब नहीं चाहिए है ना, नहीं चाहिए मुझे मोक्ष का वरदान, नहीं चाहिए मोक्ष का वरदान, तो बहुत बड़ी चीज होती है भाई, जन्म मरण से छूट जाना बहुत बड़ी चीज है मोक्ष का वरदान, लेकिन नहीं चाहिए। परम मोक्ष, परम देव मोक्षम न मोक्षावधिम्बा, और मोक्ष की अवधि भी नहीं चाहिए। मोक्ष की अवधि क्या है? वैकुंठ। मोक्ष की सबसे ऊंची स्थिति क्या? वैकुंठ की प्राप्ति है ना। एक तो मोक्ष होता है ब्रह्म ज्योति में, मोक्ष होता है ना, निराकार ब्रह्म ज्योति में मोक्ष होता है ना, तो वो तो बहुत ही मतलब निकृष्ट है, भक्त लोग कभी नहीं चाहते निराकार ब्रह्म ज्योति में मोक्ष। लेकिन वैकुंठ में बाकी चार प्रकार की मुक्तियाँ हैं, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, सारष्टि है ना। तो ये जो है अवधि है मोक्ष की, क्या? वैकुंठ। तो वो भी नहीं चाहिए, देखो मोक्ष भी नहीं चाहिए और मोक्ष की अवधि यानी वैकुंठ भी नहीं चाहिए है ना। च अन्यम, और भी अन्य वरदान नहीं चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, ना मोक्ष की अवधि वैकुंठ लोग चाहिए, तो फिर कुछ और चाहिए? नहीं, और भी कुछ नहीं चाहिए। न चान्यम वृणे अहम, वृणे माने स्वीकार करता हूँ, वरण करता हूँ, ना ना तो मोक्ष का वरदान वरण कर रहा हूँ, न मोक्ष की अवधि यानी वैकुंठ लोग वरण करता हूँ, न कोई अन्य वरदान वरण कर रहा हूँ। वरेशात, वरेशात वर के ईश्वर, आप वरदान के ईश्वर हैं, आप तो वरदान के ईश्वर हैं, फिर भी मैं नहीं चाहता, ना तो मोक्ष का वरदान चाहता हूँ, ना मोक्ष की अवधि वैकुंठ का वरदान चाहता हूँ, और ना कोई अन्य वरदान चाहता हूँ, जबकि आप तो वर देने वालों के ईश्वर हैं है ना। तो फिर क्या चाहिए? इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम, इदम ते वपु, आपका ये जो शरीर है हे नाथ गोपाल बालम, कैसा शरीर है? गोपाल बाल, गौओं को जो पालन करने वाले उनके बालक है ना, गोपाल बाल, गोपाल बालम सदा मे मनसि आविरास्ताम, सदा मेरे मन में आविरास्ताम माने आता रहे है? क्या आता रहे? आपका एक गोपाल बाल रूप, माता के भय से भाग रहे हैं है ना, तो ये जो रूप है आपका ये मेरे मन में हमेशा आता रहे। आविरास्ताम किम अन्य, किम अन्य का मतलब अन्य चीजों से क्या करना है, अन्य चीजों से क्या करना है मुझे, केवल ये चाहिए है ना। इसके बाद क्या है, इदम ते मुखाम भोजम अत्यंत नीलैर, इदम इदम ते मुखाम भोजम, तुम्हारा ये जो मुख कमल है, हाँ मुखारविंद मुख कमल, तुम्हारा ये जो मुख कमल है अत्यंत नीलैर वृतम, हाँ अत्यंत नीले का मतलब बहुत नीले, बहुत ज्यादा नीला हो तो काला हो जाता ना, तो इसका मतलब काला है, अत्यंत नीलैर वृतम घिरा हुआ है, कुंतल है, कुंतल माने बाल, आपके जो बाल हैं बहुत ही नीले यानी काले हैं, उनसे घिरा हुआ है वृतम, क्या घिरा हुआ है, तुम्हारा मुख कमल, तुम्हारा मुख कमल घिरा हुआ है, हाँ कुंतल है, स्निग्ध वक्र है गोप्या, हाँ और ये जो बाल हैं बहुत नीले यानी काले हैं और स्निग्ध भी हैं, स्निग्ध का मतलब चिकने भी हैं और वक्र भी हैं, वक्र माने टेढ़े घुंघराले, है ना, चिकने हैं काले हैं घुंघराले हैं, इन बालों से तुम्हारा मुख कमल जो घिरा हुआ है ना, फिर गोप्या मोहित चुंबितम, गोपी यशोदा के द्वारा बार बार चुंबित होता है, गोप्या का मतलब गोपी के द्वारा, कौन सी गोपी, माता शुदा, है ना, तो गोपी के द्वारा बार बार चुंबित होता है, है? तुम्हारा जो मुख है, है? और बिंब रक्त अधरम, बिंब रक्त, बिंब का मतलब है बिंब फल, एक बिंब फल होता है जिसको है लाल होता है, वो देखा है बिंब फल, नहीं बिंब फल है बिंबफल, नहीं नहीं बिंबफल लाल होता है,
लाल होता तो काली,
वो घूंची नहीं है, वो अलग है, वो नहीं है बिंबफल, वो नहीं है बिंबफल, मुझे किसी ने बताया कुंदरू है, कुंदरू जब पक जाता है ना तो लाल हो जाता है ना, तो वो है बिंबफल, कुंदरू, कुंदरू होता है ना जब पक जाता है तो लाल हो जाता है ना, तो पके बिंबफल के समान ओठ है आप, बिंब क्या है, बिंबा बिंब रक्ताधरम, बिंब रक्त अधरम, रक्त माने लाल, बिंब फल के समान लाल ओठ है आपके मुख, आपका जो मुख है उसमें जो ओठ है वो बिंब फल के समान लाल है, बिंब रक्ता धरम, मे मनसी आविरास्ताम, मे मनसी माने मेरे मन में आविरास्ताम आता रहे, आता रहे, क्या आता रहे, आपका मुख कमल, है ना, पहले तो रूप, आपका रूप, रूप में भी विशेष रूप से मुख कमल, मन में मन से आवे रास्ताम, फिर अलम लक्ष्य लाभ है, अलम, अलम माने कोई आवश्यकता नहीं है, अलम संस्कृत में अलम शब्द होता है पर्याप्त है, पर्याप्त है, जैसे भोजन ज्यादा हो गया भाई, बहुत हो गया, बहुत हो गया, नहीं चाहिए, बहुत हो गया, बहुत हो गया, अलम अलम उसको, अलम अलम है ना, अलम लक्ष्य लाभ है मतलब जरूरत नहीं है, लक्ष्य लाभ है माने लाख प्रकार के लाभों की आवश्यकता नहीं है, लाख प्रकार के लाभों की आवश्यकता नहीं है, एक ही लाभ चाहिए, क्या, मेरे मन में आपका वो मुख कमल मनसि आविरास्ताम आता रहे, अलम लक्ष्य लाभ है, इसके बाद क्या है, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, ये कई नाम है इसमें, एक तो देव है, नाम है देव जो पूजनीय है, जिनकी पूजा होनी चाहिए, देव नमो माने नमस्कार है, मैं नमस्कार करता हूँ, हे देव आपको नमस्कार करता हूँ, दामोदर आपको नमस्कार करता हूँ, दाम उदर, दाम माने बंधन, उदर माने पेट, जिनका पेट जो है बंधा हुआ है, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, अनंत जिनका अंत नहीं है विष्णु, प्रसीद प्रभु, प्रसीद का मतलब प्रसन्न होइए, प्रभु हे स्वामी आप प्रसन्न होइए, दुख जालाब्धि मग्नम, किसके ऊपर प्रसन्न होइए, मैं जो दुख जाल के समुद्र में डूबा हूं, दुखों के जाल के समुद्र में डूबा हुआ हूँ, दुख जालाधि मग्नम। तो मैं जो है मतलब दुखों के जाल के समुद्र में डूबा हुआ हूँ, मुझ पर आप प्रसन्न होइए, है ना। कृपा दृष्टि वृष्ट्या अति दीनम, तो कृपा दृष्टि की वर्षा के द्वारा, वृष्टिया का मतलब वर्षा के द्वारा, कृपा दृष्टि की वर्षा के द्वारा अति दीनम, अति दीनम माम, यानी मैं बहुत दीन हूँ, है। बत अनुग्रहण, बत बत बोलते हैं कि देखिए बताइए, इस तरह से शब्द होता है बत, है ना, कि मैं बहुत दीन हूँ, मैं बहुत कृपण हूँ, मैं बहुत दयनीय हूँ, असहाय हूँ, बत अनुग्रहण, अनुग्रहण का मतलब अनुग्रह कीजिए, ईश अनुग्रहणेश माम अज्ञम, माम अज्ञम मुझ अज्ञानी के ऊपर आप अनुग्रह कीजिए। यदि अच्छी दृश्य, तो अपनी कृपा दृष्टि के द्वारा मुझको जो है आप प्रकट हो जाइए, हाँ मेरे सामने प्रकट हो जाइए। अच्छी दृश्य, अच्छी दृश्य का मतलब है आप मेरी आंखों के लिए दृश्य हो जाइए, दृश्य माने दर्शन। इसके बाद कुबेर आत्मा जो बद्ध मूर्ति है यदवत, यदवत का मतलब है जिस प्रकार, है ना, यदवत जिस प्रकार। कुबेर आत्मा जो बद्ध मूर्तियां एव, कुबेर के पुत्रों को, ये दो वचन में है, कुबेर आत्मा जो, है ना, कुबेर के जो दो पुत्र थे हैं उनको, हाँ बद्ध मूर्तियां एव, आप बधी हुई मूर्ति के द्वारा ही आपने उनको मुक्त कर दिया। आप खुद तो बंधे हैं, आप खुद तो अपने को नहीं छुड़ा सकते हैं लेकिन दूसरों को छुड़ा सकते हैं कुबेर आत्मा जो, कुबेर के दोनों पुत्रों को जो है आपने जिस प्रकार से छुड़ाया, है उस वृक्ष योनि से छुड़ाया, है अपराध ब्राह्मण नारद जी को जो है अपराध किया था, उनके साप से मुक्त किया, नारद जी ने साप दिया कि तुम वृक्ष योनि में 36,000 साल तक रहो, सोचिए 36,000 साल से वृक्ष बने हुए थे, है ना। तो आपने उस नारद जी के साप से उनको तो मुक्त कर दिया, ये खुद मुक्त नहीं हो सकते, खुद बंधे हुए हैं। बद्ध मूर्तियां एव यदवत तो या मोचितो, जिस प्रकार से आपके द्वारा वो मुक्त हुए, और केवल मुक्त ही नहीं हुए साप से, बल्कि भक्ति भाजो कृतोचा, हाँ वो भक्ति भाजन, भक्ति भाज, भक्ति के भी भाजन बन गए, भक्ति के भाजन बन गए, भक्ति के पात्र भी बन गए, भाजन का मतलब पात्र, भक्ति के पात्र भी बन गए, केवल छोटे नहीं ब्रह्म नारायण जी के साप से, बल्कि भक्ति के भाजन भी बन गए, भक्ति के पात्र भी बन गए, है ना। तथा तथा माने उसी प्रकार, जिस प्रकार से तुम्हारे द्वारा वो वृक्ष की योनि से छूट गए, नारद जी के साप से छूट गए और भक्ति के भाजन बन गए, तथा प्रेम भक्तिम सुकाम में प्रियच्छ, उसी प्रकार से प्रेम भक्ति अपनी मुझे दीजिए, उसी प्रकार की प्रेम भक्ति मुझे अपनी दीजिए। न मोक्षे ग्रहो मेस्ति, मेरा मोक्ष के प्रति कोई आग्रह नहीं है, मोक्ष के प्रति मेरा कोई आग्रह नहीं है, हाँ दामोदर ई है, यह माने इस संसार, इस संसार से मुक्ति के प्रति मेरा कोई आग्रह नहीं है, मतलब इस संसार में जन्म मरण ना हो, है ना, तो इसका कोई आग्रह नहीं मेरा, मतलब जन्म जन्म मुझे आपकी भक्ति चाहिए, है ना, जन्म में कोई शिकायत नहीं है, चाहे जितना जो भी जन्म मिले, जहाँ भी जन्म मिले, जैसा भी जन्म मिले, उसमें कोई शिकायत नहीं मुझे, लेकिन क्या चाहिए मुझे, प्रेम भक्ति, है कहाँ पर है, हाँ हाँ, तथा प्रेम भक्तिम सुकाम में प्रियच्छ, तो मुझको जो उसी प्रकार की प्रेम भक्ति दीजिए, जिस प्रकार की प्रेम भक्ति आपने किनको दिया, हाँ नलकुबर मणिग्री कुबेर के पुत्रों को, जिस प्रकार प्रेम भक्ति आपने दिया, है ना। इसके बाद नमस्ते, नमस्ते का मतलब है नमस्ते, यानी आपको नमस्कार है, अस्तु होवे, आपको नमस्कार होवे, नमस्ते अस्तु, हैं दामने, हैं अच्छा हाँ, आप आपको नमस्कार होवे, और फिर दामने, दामने का मतलब उस बंधन को भी नमस्कार है, वो बंधन भी दामने इस पर दीप्ति धामने इस पर दीप्ति प्रकाशमान दीप्ति जो है आप उसके धाम है प्रकाशमान दीप्ति की आप धाम है धामने तो दिए उधर आए आपके उधर को भी नमस्कार अथ विश्व से धामने विश्व का धाम है आपका उधर क्या है संपूर्ण विश्व आपके उधर में है विश्व से धामने नमो राधिकाय फिर राधिका को नमस्कार है तो दिव्य प्रिया है जो आपकी प्रिया है नमो अनंत लीला है जो अनंत लीला वाले हैं आपको नमस्कार है देवाय तुभ्यम आप देवता को नमस्कार है तो इस प्रकार से इस दामोदर अष्टकम की हमने चर्चा की है तो इसमें एक घटना में बताऊंगा कि जिस समय वृक्षों को जो है भगवान ने तोड़ा था है ना तो वृक्षों को तोड़ा था तो दो वृक्ष थे वो जुड़वा वृक्ष थे जुड़वा वृक्ष ऐसे थे मतलब जड़ दोनों की जड़ जो है मतलब एक ही थी है ना और तने जो है अलग अलग थे है? और ये जो वृक्ष थे ये मैंने बताया कितने पुराने थे 36,000 साल पुराने थे देवताओं के 100 साल तक नारद जी ने साथ दिया था कि तुम वृक्ष योनि में रहो तो देवताओं के 100 साल मतलब पृथ्वी के 36,000 साल होते हैं जो 36,000 साल पुराने और वो भी हरे भरे वृक्ष थे तो वृक्ष कितने मजबूत होंगे है ना है? और कृष्ण ने जब मतलब वो बीच में गए उखड़ जो है फंस गया था तो कृष्ण जो है थोड़ा सा जोर लगाया था बिना परिश्रम के थोड़ा सा जोर लगाया था तो वृक्ष गिरे तो जब वृक्ष गिरे तो ऐसे नहीं गिरे ना ऐसे गिरे कैसे गिरे ऐसे गिरे उल्टी दिशा में गिरे है ना जहाँ मतलब किसी को कोई खतरा नहीं हुआ कृष्ण थे और कृष्ण के सखा लोग तो कृष्ण जो है उस तरह से मतलब निकले थे सखा जो है इस साइड में थे और कृष्ण उस साइड में चले गए तो वृक्ष ना तो इस साइड में गिरे और ना उस साइड में गिरे कैसे गिरे ऐसे गिरे जहाँ की किसी प्रकार का खतरा नहीं था है ना ऐसे गिरे और जब वृक्ष गिरे तो इतनी जोर से धरती में कंपन हुआ और आवाज हुई कि जितने ब्रजवासी थे वे सब मूर्छित हो गए जितने ब्रजवासी थे वे मूर्छित हो गए लेकिन कृष्ण और कृष्ण के जो सखा हैं उन्हें कुछ कुछ नहीं हुआ है लेकिन पूरे ब्रज में पूरे गोकुल में जो है कोई आया नहीं क्योंकि तो बाद में वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में कि वृक्षों से जब वृक्ष गिर गए तो उन वृक्षों से दो निकले यक्ष नलकुबर वनगिरी निकले और उन्होंने कृष्ण की परिक्रमा की और कृष्ण की स्तुति की कृष्ण को प्रणाम किया है ना और कृष्ण की आज्ञा लेकर के उत्तर दिशा में चले गए हैं अपने स्थान में चले गए और जब वो चले गए उसके बाद सब ब्रजवासी आए है ना तो इसका कारण क्या है इसका कारण ये है कि इतनी देर तक ब्रजवासी क्यों नहीं आए तो एक प्रश्नता है कि इतनी लंबी जो है वो उन कुबेर के पुत्रों ने प्रार्थना की कृष्ण की तो उस समय तक कोई था नहीं और जब वो लोग चले गए तब ब्रजवासी आए तो इसका कारण क्या है गोकुल में जो है कोई नहीं आया इतनी देर तक इसका कारण क्या है तो जीव गोस्वामी बताए इसका कारण यही है कि एक दंड तक जो है ब्रजवासी लोग मूर्छित पड़े रहे मतलब 24 मिनट तक पूरा गोकुल उस आवाज के कारण मूर्छित हो गया था इसलिए कोई नहीं आया है और जब होश में आए तो उन्होंने देखा कि वृक्ष ऐसे गिरे पड़े हैं और बालक जो है वृक्षों के बीच में बंधा हुआ बैठा है ना तो उनको जो है फिर आश्चर्य हुआ कि कैसे ये वृक्ष कैसे गिरे है ना तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है ना और बालकों ने बताया कि बालकों को कोई आश्चर्य नहीं हुआ बच्चों को कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्यों उनको अनुभव नहीं है बच्चों को अनुभव नहीं है तो वो कोई आश्चर्य उनको कोई आश्चर्य नहीं हुआ तो बच्चे क्या कहते हैं इसमें आश्चर्य की क्या बात है कृष्ण जो है खींचा उखल को उखल फंसा था तो पेड़ गिर गए तो उसमें क्या आश्चर्य की बात है, है? और इसमें से तो हमने दो बड़े सुंदर और चमकदार पुरुष भी निकलते देखे हैं जो इस बालक को प्रणाम कर रहे थे दोनों के दोनों परिक्रमा कर रहे थे, तो ब्रजवासियों ने कहा ये बच्चों का प्रलाप है ये बच्चों की बातें हैं, क्या कुछ मतलब ही नहीं होता बच्चों की बातों का क्यों? तो वे ब्रजवासी लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि उनके पास बुद्धि थी, वो दिमाग लगा रहे थे, और दिमाग लगाओगे तो कृष्ण को नहीं समझ सकते और जिन्होंने दिमाग नहीं लगाया अपना, उनको अनुभव ही नहीं था, तो वो कहते हैं कि इसमें क्या आश्चर्य, ये तो कृष्ण ने खींचा और जो है गिर गए और ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो कोई उनकी बात को नहीं मानता है ना। तो इस तरह से भगवान ने जो है ऐसी लीलाएं करी हैं ब्रज में। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। अच्छा, तो इसका कारण क्या था, जो कि ये जो घटना है आज के दिन हुई और किसी दिन नहीं हुई? कृष्ण ने जो है ये सब जो मतलब तोड़ा, ये मक्खन मतलब दही दही तोड़ा, ये सब तोड़ फोड़ किया, इधर चोरी किया, ये किया, फिर भागे, माता शोधा ने पकड़ा, तो ये सब जो घटनाएं हैं आज के दिन क्यों हुई और किसी दिन क्यों नहीं हुई, इसका कारण?
सब लोग चले गए,
हाँ ये महीना बहुत पवित्र नहीं, वो तो अलग बात है, लेकिन आज के दिन ही क्यों हुआ? नहीं नहीं, मैंने कुछ बताया
है,
उनके श्राप का समय पूरा हो गया था, ये भी कारण है, लेकिन और कारण जो है वो क्या है, कुछ और भी तो कारण है। हाँ जी हाँ जी, आप बताइए। तो फिर क्या हुआ, इंद्रदेव की पूजा बंद करने के लिए? इंद्रदेव की पूजा बंद की 7 साल की उम्र में, अभी 3 साल के हैं। हाँ जी नीलकंठ, तो इसका कारण क्या, उनको छोड़ के क्यों जाना पड़ा? भौतिक जगत नहीं,
दूध
फन रहा था। हाँ नहीं, जो मैंने बताया ना वो कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया, घर में कोई दासी नहीं थी, घर में कोई दासी नहीं थी, घर में कोई नहीं था है ना, रोहिणी भी नहीं थी है ना, कहाँ गई थी सब, सब लोग कहाँ चले गए, दासी छुट्टी लेके चले, क्यों? अगले दिन हाँ इंद्रियाग होना, बहुत बड़ा उत्सव होना है, तो सब लोग चलेंगे सवेरे सवेरे का काम करके, सब लोग चलेंगे है ना, और रोज रोज ऐसा नहीं होता था, रोज तो सेवा में रहती थी और माता शुदा कृष्ण के साथ रहती थी, तो कोई समस्या नहीं थी, तो कोई समस्या नहीं थी है ना, यानी आज के दिन जो है समस्या हो गई है। और रोहिणी, रोहिणी कहाँ गई थी, घर में अगर रोहिणी होती तो समस्या नहीं होती, बलराम जी को लेके कहाँ चले गई थी, उपनंद के घर, उपनंद के घर चले गए, उनके घर में निमंत्रण था तो वहाँ चले गए है ना, अब घर में अकेले यशोदा और कृष्ण थे तो समस्या हो गई पैदा, इसलिए समस्या हो गई, समझ गए। धन्यवाद। श्री कृष्ण कथा महामहोत्सव की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।